Washington Square by Henry James. Tehreer aur Peshkash Sayyid Irfan Ali. www.sayyidirfanali.com. 50 साल ऑस्टिन स्लोपर न्यूयॉर्क शहर के मशहूर मारूफ डॉक्टर थे। हर लिहाज से कामयाब, शहर की हर बड़ी दावत में उन्हें जरूर बुलाया जाता और उनकी काबिलियत की तारीफ की जाती। उनके मरीज उनसे बेहद खुश थे, क्योंकि इलाज तजवीज करने, दवाइयां लिखने के साथ बीमारी होने की वजह भी बताते। वो बात करने के, मुतमईन करने के फन से भी खूब वाकिफ थे। तमाम मुल्क में उन्हें जाना जाता था, इज्जत की जाती थी। ना सिर्फ ईमानदार थे बल्कि बेहद खुशकिस्मत भी। सेहत, दौलत, शोहरत, हर चीज उनके पास थी। 27 साल की उम्र में जब उन्होंने शादी की तो किस लड़की से? न्यूयॉर्क शहर की खूबसूरत और अमीर लड़की से, जो समझदार भी थी। उन्होंने जिससे मोहब्बत की उससे शादी भी हो गई। यहां भी किस्मत उन पर मेहरबान थी। जब उस खूबसूरत लड़की से मोहब्बत की तो कई लोग उस लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर डॉक्टर न्यूयॉर्क सोसाइटी में अपने आप को मनवा चुके थे, अगरचे उस वक्त कम उम्र थे। उन्होंने बीवी से मोहब्बत की, वो दौलत भी साथ लाई। उसके हुस्न में गिरफ्तार तो रहे, मगर अपने पेशे से गाफिल ना रहे और उसमें मुसलसल तरक्की करते रहे। हर नए रोज के साथ कामयाबियां उनके कदम चूमती रहीं। हर तरह से कामयाब डॉक्टर को जिंदगी में पहली नाकामी उस वक्त देखनी पड़ी जब उनका प्यारा बेटा 3 साल की उम्र में मर गया। माँ की शदीद तरीन मोहब्बत और बाप की काबिलियत उसे ना बचा सकी। डॉक्टर की शदीद ख्वाहिश थी कि बेटे की कमी पूरी हो। खुदा ने एक और औलाद तो दे दी, मगर वो लड़की थी। कहां डॉक्टर की सोचें कि बेटे को आला तरीन मकाम पर लेकर जाना है, और कहां एक लड़की। डॉक्टर ने कभी अपनी बीवी के अलावा किसी को अहमियत ना दी, क्योंकि औरतें उनके ख्याल में जिस्मानी और जहनी लिहाज से कमतर थीं। बेटी की पैदाइश के 1 हफ्ते बाद मां भी मर गई। सारी दुनिया में जिस डॉक्टर ने अपने इलाज से धूम मचा रखी थी, उसका इल्म अपने प्यारे बच्चे और बेहद मेहरबान और खूबसूरत बीवी को ना बचा सका, और उनके पास अब सिर्फ एक बेटी थी, बहुत सेहतमंद। डॉक्टर ऑस्टिन की 2 बहनों में एक तो अमीर और खुशहाल थी, बहुत से बच्चों की माँ, और दूसरी गरीब थी। कोई बच्चा ना था, ना जायदाद, और शोहर मर चुका था। डॉक्टर साहब की बेटी कैथरीन 10 साल की हुई तो उस गरीब बहन को डॉक्टर ने अपने पास बुला लिया। डॉक्टर स्लोपर अपने काम में मशगूल रहते, बहन ही कैथरीन की देखभाल करती। वक्त गुजरता रहा और कैथरीन 17 साल की हो गई, बहुत सेहतमंद, मगर ना उसमें बाप की काबिलियत थी और ना माँ की सी खूबसूरती। कुछ का ख्याल था वो बेहद मिलनसार है, कुछ कहते बस गुजारा है, मगर असल में वो ऐसी थी ही ना कि लोग उसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू करते। बाप ने बहुत तरक्की की, मगर बेटी को देखकर मायूस हो जाते, मगर फिर भी उसका बेहद ख्याल रखते। वो अपने बाप की जायदाद की वाहिद मालिक थी, बाप से बेहद मोहब्बत करती, मगर उसे इल्म था कि वो उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी। अपनी मिलनसारी और शर्म की वजह से बहुत कम बोलती, लोगों से दूर रहती तो वो समझते ये अहमक है। डॉक्टर स्लोपर की सोच आला मगर सादा थी। मगर बड़े होने के बाद उनकी बेटी ने ऐसे कीमती और शोख रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा होने के बजाय उसे अपनी उम्र से बड़ा दिखाना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन स्क्वेयर जैसे खूबसूरत इलाके में उसका घर था, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक उसका बाप, मगर खूबसूरत ना होने और खामोश रहने की वजह से लोगों की नज़रों में ना आ सकी। एक रोज़ अपनी खाला ऑलमंड की बेटी अपनी कज़न मैरियन की मंगनी में शामिल होने गई तो कज़न ने उसका तारुफ वहाँ मौजूद एक मेहमान नौजवान से करवाया। बेहद खूबसूरत, लंबा चौड़ा मिस्टर मॉरिस। एक तरफ कैथरीन जो खूबसूरत ना थी ना लोगों से मिलती बातें करती, दूसरी तरफ वो खूबसूरत नौजवान जो उसके नज़दीक मौजूद उसकी आंखों में झांकते हुए मुसलसल दिलचस्प गुफ्तगू कर रहा था। कैथरीन उसे पसंद कर रही थी, चाहती थी वो वहाँ मौजूद रहे, उससे बातें करता रहे और वो उसे देखती रहे। उन्होंने डांस किया, उसकी मोहब्बत का जादू कैथरीन पर चल चुका था। कैसा खूबसूरत है, कितना ज़हीन है, आदत भी कितनी अच्छी है, वो उसे पसंद करने लगी थी। मॉरिस ने कहा न्यूयॉर्क उसके लिए अजनबी है, यहाँ उसका कोई साथी नहीं, लोग मिलते हैं मगर भूल जाते हैं। कैथरीन ने दिल में सोचा ऐसे खूबसूरत इंसान को भला कोई भुला सकता है। कुछ देर बाद उसकी कज़न ने अकेले में पूछा, मॉरिस कैसा लगा, अच्छा है ना? कैथरीन ने अपनी पसंद को छुपाते हुए कहा, हाँ बस ठीक है। मॉरिस उसकी आंटी से बातें कर रहा था। कैथरीन ने ये देखा तो खामोशी से पीछे हट गई, मगर चाहती भी यही थी कि वो उसके ख़ानदान के करीब आए ताकि वो उसे मिलती रहे, उसके करीब रहे, उसकी बातें सुने, उसे देखती रहे। वापसी पर आंटी और डॉक्टर स्लोपर बातें कर रहे थे कि वो नौजवान कैथरीन में दिलचस्पी ले रहा था, शायद पसंद कर रहा था। आंटी ने कहा कि हाँ, उसने कैथरीन के लिबास की तारीफ की। तो ज़हीन डॉक्टर ने कीमती शोख लिबास पर नज़र डालते हुए कहा, अच्छा तो वो इंसान से ज़्यादा लिबास में दिलचस्पी ले रहे थे। कैथरीन के लिबास ने उसे एहसास दिलाया होगा कि ये लड़की कितनी अमीर है, कितनी बड़ी जायदाद की मालिक। बाप हकीकत पसंद था, उस नौजवान को पसंद ना किया, मगर बेटी ने बेहद पसंद किया। और आंटी की भी ख्वाहिश थी कि कैथरीन और मॉरिस मोहब्बत करें, उनकी शादी हो, अच्छी ज़िंदगी बसर करें। चंद दिन बाद मॉरिस कैथरीन के कज़न के साथ उसके घर आ गया। कज़न बोला, ये मेरा दोस्त मुसलसल आपके बारे में गुफ्तगू करता रहा, शायद आपको पसंद करने लगा है, अच्छा इंसान है, लोग कहते हैं बहुत अक्लमंद है। कैथरीन ने पूछा, क्या ये अब हमेशा यहाँ रहेंगे? जवाब मिला, अगर यहाँ मसरूफियत का सामान पैदा हो गया तो। इनके वालिद साहब नहीं जिनके साथ काम करे, सिर्फ एक बहन है। वो जाने लगा तो कैथरीन खुश थी कि मॉरिस उसके घर आया। आंटी ने कहा, मैं कैथरीन को बताऊंगी आपने उसके बारे में क्या बातें की। कैथरीन शर्मा गई कि उसके बारे में गुफ्तगू होती रही। बाद में आंटी ने बताया कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे लिए ही यहाँ आया, और हाँ उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम भी कर लिया है। कैथरीन हैरान थी, ऐसा खूबसूरत और अक्लमंद इंसान उसे कैसे पसंद कर सकता है। डॉक्टर स्लोपर को इल्म हुआ तो बोले, क्या वो कैथरीन से शादी करना चाहता है? अगली मर्तबा आए तो मुझसे मुलाकात करवाना। चंद दिन बाद वो आ गया, मगर डॉक्टर घर पर ना थे। देर तक कैथरीन और वो बातें करते रहे। मैं थिएटर जाती हूँ, म्यूजिक पसंद है, किताबें अच्छी नहीं लगती। वो बोला, हाँ किताबें बोर करती हैं, मुझे घूमने का शौक है, किताबों में जिन जगहों का लिखा होता है वो खुद देखी हैं, मगर लोग ऐसे नहीं होते जैसे उन्हें समझा जाता है। असल में कुछ और, देखने में कुछ और। राइटर्स और थिएटर्स के एक्टर्स की तरह जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, मगर सच्ची और नेचुरल चीजें मुझे पसंद हैं, उसने कैथरीन की आंखों में झांकते हुए कहा। नेचुरल खूबसूरती जैसे आप में है या जैसे मैं खुद। वो अपनी तारीफें करता रहा, मगर कैथरीन को ये भी अच्छा लग रहा था। वो चाहती थी वो बैठा रहे, बातें करता रहे। उसके जाने के बाद कैथरीन ने अपने वालिद को मॉरिस के आने के बारे में बताया। क्या उसने शादी के बारे में कहा? नहीं, मगर शायद अगली मर्तबा कह दे, कैथरीन ने शर्माते हुए कहा और चली गई। डॉक्टर ने बेटी की पसंद देखी तो बहन से मॉरिस के बारे में पूछा। वो नेवी में था, नौकरी छोड़ दी, दुनिया की सैर का शौक है। कुछ जायदाद थी मगर खर्च कर चुका है। अपनी बेवा बहन के साथ रहता है, मिसिस मॉन्टगोमरी, जिनके 5 बच्चे हैं। अब संजीदा जिंदगी बसर करना चाहता है। अगर कैथरीन से शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोग उसकी संजीदगी की वजह से उसके करीब नहीं आते। डॉक्टर बोले, ठीक है, मगर उसकी जायदाद नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो गुजारा कैसे करता है? क्या बहन से खर्चा लेता है? अकलमंद डॉक्टर सोच रहे थे, गरीब होना बुरी बात नहीं। कैथरीन तो खुद बहुत बड़ी जायदाद की मालिक है, मुखलिस होना जरूरी है। डॉक्टर स्लोपर ने मॉरिस से मुलाकात की और महसूस कर लिया कि वो बहुत चालाक है। बातें करनी आती हैं, खुश लिबास है, खुद एतमादी तो बहुत ही ज्यादा है। मगर डॉक्टर साहब के जहन ने उसे कबूल ना किया, पसंद ना किया। मॉरिस खुद भी ये महसूस कर गया और कैथरीन से कहा, आपके वालिद ने मुझे पसंद नहीं किया। आप मुझे अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी आपके वालिद को भी अच्छा लगने लगूं। कैथरीन परेशान थी, जबकि उसके वालिद साहब जो दुनिया देख चुके थे, उनकी ख्वाहिश थी कि कैथरीन इस नौजवान के करीब ना जाए। मगर कैथरीन तो मॉरिस से मोहब्बत कर रही थी, उसका इंतजार करती। उसके करीब रहना, उससे मुलाकात करना दुनिया की सबसे अनमोल शय थी। डॉक्टर ने बहन से कहा कि मॉरिस यहां क्यों आता है? बहन ने जवाब दिया, इसलिए कि कैथरीन उसे पसंद करती है और वो कैथरीन को, मगर वो कुछ नहीं करता। तलाश तो कर रहा है, जल्द मकाम हासिल कर लेगा। हां, वो यहां मकाम बनाने ही आया है। एक बेवकूफ और कमजोर लड़की जो करोड़ों की जायदाद की अकेली मालिक है, उसका शोहर बनकर। बहन ये बात सुनकर गुस्से में आ गई और वहां से चली गई। बाप ने कैथरीन से मोहब्बत की वजह से दोबारा मॉरिस से मुलाकात की। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तलाश कर रहा हूं। किसी दूसरे शहर क्यों किस्मत नहीं आजमाते? यहां जिम्मेदारियां हैं, बहन को मेरी जरूरत है, उनके बच्चे पढ़ाता हूं। मगर ये तो कोई नौकरी नहीं। कैथरीन अपनी मोहब्बत की वजह से मॉरिस को खोना नहीं चाहती थी। जब इल्म हुआ कि बाप अच्छा नहीं समझता तो परेशान हो गई। मॉरिस घर आओ। नहीं, बाहर मिलेंगे कल। बाहर अकेले हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। फिर दोबारा मिली तो कहा कि मैं वालिद से बात करूंगी। तुम बात करोगी तो वो कहेंगे मैं तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करता हूं, तुमसे नहीं। मैं वालिद से बात करूंगी कि हम मोहब्बत करते हैं। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ, बहुत। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रात को वो वालिद से मिली। कुछ देर दोनों खामोशी से रोशनदान में जलती हुई आग को देखते रहे। अब्बू, मैं शादी करने वाली हूँ। अकलमंद वालिद समझ चुका था यही बात कही जाएगी। हाँ, अच्छा हुआ मेरे इल्म में ये बात लाई। कौन है वो? मिस्टर मॉरिस। हाँ, अच्छा, तुमने बहुत जल्दबाजी से काम किया है। इंसान को समझने के लिए उम्र चाहिए होती है, तजर्बा चाहिए होता है। तुम कम उम्र हो, बहुत अच्छी हो, सादा हो, मासूम हो। अब वो मुझे पसंद करता है और मैं उसे। मैंने थोड़े अरसे में ही अपने आप को मजबूत इंसान समझना शुरू कर दिया है, अकलमंद महसूस कर रही हूँ। वालिद ने नाराजगी से कहा, अभी नहीं मगर जल्द ही तुम्हें अकल आ जाएगी, वक्त और तजर्बा तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। मुझे ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। आप मॉरिस को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं डर रही थी आप इजाजत नहीं देंगे। आप समझ रहे होंगे वो मेरी दौलत से मोहब्बत करता है, वालिद ने समझाया। देखो तुम बहुत अच्छी हो, नेक दिल हो, शायद वो तुम्हारी दौलत की ख्वाहिश ना रखता हो, मगर पहले उसके पास जो दौलत थी वो उसने फजूल खर्चों में उड़ा दी। मगर अब्बू वो बहुत अच्छा है, सखी दिल है, सच्चा है, नेक है। ठीक है ठीक है, मैं कल उससे मिलूंगा। दूसरे दिन उनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर स्लोपर बोले, तुम चाहोगे कि मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी शादी से खुशी होगी, मगर ऐसा नहीं। तुम कैथरीन से उस वक्त से करीब आना चाहते होंगे जब तुम उससे मिले भी नहीं होंगे। तुम ना नौकरी करते हो ना जायदाद है, इसलिए एक अमीर लड़की तुम्हारी मंजिल है। नहीं ऐसा नहीं है, कैथरीन मुझे अच्छी लगती है, मैं गरीब हूं इसलिए मुझे नापसंद ना करें। मैं बेवकूफ़ी में अपनी जायदाद ख़त्म कर चुका हूँ, अब गलती का एहसास है और अब मैं कैथरीन की जायदाद की हिफाजत करूँगा, बहुत हिफाजत। डॉक्टर बोले, मॉरिस पहले तुमने बहुत फजूल खर्ची की, अब बहुत कंजूसी का ख्याल है, दोनों चीज़ें ही बुरी हैं। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपनी बेटी को भी तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ दे रहा हूँ हाँ, मगर मुख्तसर वक्त के लिए, वो तुम्हें जल्द भूल जाएगी, मगर जो तकलीफ तुम हमेशा के लिए दोगे वो ज्यादा परेशानी देगी। नहीं मैं कभी शादी की इजाजत नहीं दूंगा, मुझे मेरी बेटी अजीज है, उसे तुमसे दूर हो जाना चाहिए और वो ऐसा ही करेगी। मॉरिस वहां से चला गया। बहन ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैथरीन का दिल टूट जाएगा। वालिद ने बेटी से बात की मगर वो कुछ ना बोली, ना रोई, ना दरख्वास्त की कि शादी करने की इजाज़त दे दी जाए, बस चुप रही। बाप ने मॉरिस की बहन से मिलने का फैसला किया। मिला, आपका भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है जो बहुत अमीर है, मगर मॉरिस से शादी के बाद उसे मैं अपनी जायदाद से कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ मरहूम माँ की तरफ से रकम मिलेगी। मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, मासूम है, बुरे लोगों से वाकिफ नहीं, एक बुरा शोहर उसके लिए अजाब बन सकता है। आप भी शायद यही कहेंगी कि शादी होने दूं, मगर एक निकम्मे सुस्त और लालची इंसान से अपनी बेटी की शादी कैसे होने दूं। वो खातून हैरान होकर जल्दी से बोली, मेरा भाई तो इस बात को बहुत अच्छी तरह छुपाता है कि वो खुदगर्ज और लालची है, मेरे 5 बच्चे हैं, खुद भी अमीर नहीं, फिर भी भाई की इमदाद करती हूँ। वो रो रही थी, वो मेरा भाई है, इखलाकी खराबी उसमें कोई नहीं, सिर्फ लालची है, मगर मुझे लगता है आपकी बेटी कैथरीन वाकई बहुत अच्छी है, तो फिर ये शादी कभी ना होने दें। कैथरीन की भी अजीब आदत थी, शायद जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया या ये बर्दाश्त था, बाप ने शादी से मना कर दिया, उसने मान लिया, अपनी पसंद का जिक्र ना किया, ना रोई और एक लफ्ज भी बाप के खिलाफ ना कहा, खामोशी, बिल्कुल खामोशी। खत लिखकर मॉरिस से कहा कि वो मजबूर है, तकलीफ में है, बाप के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती, मगर दिल में दुआएं करती कोई मौजजा हो जाए कि मॉरिस मुझे मिल जाए। आंटी की भी ख्वाहिश थी कि वो मिल जाएं, मॉरिस से मिली और कहा, तुम कैथरीन से छुप कर शादी कर लो, बाद में डॉक्टर स्लोपर को बता देना, उनकी इजाज़त के बगैर शादी कर लो, उन्हें यकीन दिला दो कि तुम कैथरीन से मोहब्बत करते हो, उनकी दौलत से नहीं। वो बोला, मगर दौलत जायदाद की अहमियत तो होती है, क्या वाकई अगर मैं कैथरीन से शादी कर लूँ तो उसे जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा? हाँ ऐसा मुमकिन है। वो परेशान हो चुका था, क्या तुम उसकी जायदाद की खातिर शादी करना चाहते थे? नहीं, मगर मैं नहीं चाहूंगा कैथरीन को मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे। आंटी ने घर आकर कैथरीन से कहा कि वो मॉरिस से मुलाकात करे। वो बोली, नहीं अब्बू ने मना किया है, वो उसे पसंद नहीं करते, मैं उनके खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी, मैं नहीं मिलूंगी, आप भी ना मिलें। आंटी गुस्से में आ गई। मुझे क्या जरूरत है उससे मिलने की? एक तो मदद करो, दूसरे बातें सुनो। कैथरीन ने एक बार फिर किस्मत आजमाने का फैसला किया। बाप से मिली। उसने शफकत से उसे करीब बुलाया, प्यार किया। बेटी, तुम मुझे बहुत अजीज हो, बहुत ज्यादा। वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, उसे भूल जाओ। नहीं अबू, मैं उसे नहीं भूल सकती। मैंने उसे कहा मुझसे ना मिलो, इंतजार करो, वक्त गुजरने दो, एक दिन आप मान जाएंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर उससे मुलाकात की तो मुझसे ताल्लुक ख़त्म। मेरी जायदाद में उस शख्स के लिए कोई हिस्सा नहीं। कैथरीन रो रही थी। बाप ने उसके जाने के बाद बहन से भी कह दिया कि आइंदा उस शख्स से ना मिला जाए, ना जिक्र किया जाए। बहन जानती थी कैथरीन किस कदर तकलीफ में है, मगर अपने दर्द को दुनिया से छुपा रही है। और वाकई ऐसा ही था। कैथरीन की मॉरिस से अगली मुलाकात हुई तो उसने कहा मुझसे शादी कर लो, सोच लो वालिद के साथ रहना है या मेरे साथ। देखो मॉरिस, मेरे वालिद ने मुझे जायदाद से कुछ नहीं देना, क्या मैं तुम्हें फिर भी कबूल हूं? वो बोला आपके वालिद इतने जालिम तो नहीं हो सकते, शादी के बाद सोच तब्दील कर लेंगे। शायद ये मुमकिन ना हो, मगर मेरे पास कुछ अपनी दौलत भी है, जब तुम कहोगे मैं तुमसे शादी कर सकती हूं। मगर मॉरिस सोच रहा था कि बाप की दौलत के बगैर क्या शादी मुमकिन है। डॉक्टर स्लोपर अपनी बेटी की वजह से परेशान थे। बेटी को बैरून मुल्क ले जाने का फैसला किया ताकि वो माहौल की तब्दीली से मॉरिस और उसकी मोहब्बत को भूल जाए। कैथरीन दूसरे मुल्क जाने से पहले मॉरिस से मिली। वालिद मुझे बाहर ले जा रहे हैं 6 माह के लिए ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वो बोला जरूर जाओ, बहुत शानदार जगह है वहां पर, शायद तुम्हारे बजाय उनका दिमाग तब्दील हो जाए और वो तुम्हारी शादी जायदाद के साथ करने पर राजी हो जाएं। कैथरीन अपने वालिद के साथ दूसरे ममालिक की सैर करती रही। कई माह बाद बाप ने पूछा तो उसने जवाब दिया मुझे वो अब भी अच्छा लगता है, उसके खत भी आते हैं। बाप नाराज था। कैथरीन, मुझे गलत मत समझना, एक दिन तुम दुनिया में अकेली रह जाओगी, वो तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा, परेशान होंगी तुम। अब्बू, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं ना उसे भूल सकती हूं ना छोड़ सकती हूं। तो इसका मतलब है तुम वापस जाकर शादी करोगी? पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर स्लोपर नाराज थे। वो वापस आ गए। इस दौरान मॉरिस कैथरीन के घर आता रहा और दावतें उड़ाता रहा। आंटी ने उसका बेहद ख्याल रखा और ये बात कैथरीन की वापसी के बाद उसे बताई। मॉरिस मिला तो कैथरीन ने बताया कि वो अब भी शादी करना चाहती है और वालिद अब भी शादी के लिए तैयार नहीं। जायदाद में हिस्सा मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर हमारी शादी होती है। मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। वो बोला मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर तुम्हारे वालिद तो अजीब इंसान है, इतने जालिम होंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। अब वो संजीदगी से सोच रहा था कोई बहाना करके कैथरीन से पीछा छुड़ा ले। वो फिर भी कैथरीन से मिलता रहा, मगर शादी का ना कहा। एक दिन कहने लगा मैं कारोबार का सोच रहा हूं, दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा, काफी अरसा दूर रहना पड़ेगा। कैथरीन परेशान थी। हमने इतना इंतजार किया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे? उसने बेदिली से हां कह दी। कैथरीन कह रही थी मॉरिस वादा करो कल आओगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसने वादा किया, मगर कैथरीन समझ रही थी वो दोबारा नहीं आएगा। उसके जाने के बाद देर तक रोती रही। वो ना आया और कैथरीन अपनी मोहब्बत और दर्द को सबसे छुपाती रही, छुप छुप कर रोती रही। डॉक्टर स्लोपर खुश भी थे और उदास भी। बेटी की परेशानी से उदास और ये देखकर खुश कि वो दुरुस्त थे कि कैथरीन को छोड़ जाएगा। और देखो मेरा कहना सच था, शादी से पहले ही छोड़ गया। जब मॉरिस कई दिन ना आया तो कैथरीन उससे मिलने गई। पता चला वो तो दूसरे शहर जा चुका है। कैथरीन की हालत खराब थी, मोहब्बत अपना असर दिखा रही थी। कभी अपनी आंटी पर गुस्सा आता तो कभी अपने वालिद के बारे में सोचती वो कितने जालिम हैं। चाहती थी मॉरिस उसे मिल जाए और हमेशा हमेशा एक साथ रहें। मॉरिस का खत आया जिसमें उसने लिखा कि वो कारोबार के सिलसिले में बहुत अरसा दूर रहेगा। वो उसे पहले भी चाहता था, अब भी चाहता है, मगर ये भी ख्वाहिश है कि उसकी वजह से वो जायदाद से महरूम ना कर दी जाए। वो हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगे, जब भी मिलेंगे अच्छे दोस्तों की तरह। खत पढ़ा, जहनी तकलीफ और दर्द में इजाफा हो गया, मगर आदत ऐसी थी कि तकलीफ दूसरों को ना बताती, बस चुपचाप बर्दाश्त करती रही। वक्त गुजरता रहा। डॉक्टर स्लोपर ने एक दिन पूछा, तुम शादी कब कर रही हो? नहीं, शादी नहीं कर रही हूं। ओहो, इसका मतलब है तुम्हारे दरमियान ताल्लुक खत्म हो चुका है, वो तुम्हें छोड़ चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने उसे कहा मुझसे दूर चला जाए, इस शहर को मेरे कहने पर उसने छोड़ दिया, अब बहुत अरसे तक बाहर रहेगा। वाली साहब जो चाहते थे कि उन्हें फतह हो और वो कैथरीन को छोड़ दे, अब वो कुछ ना कह सकते थे। बस इतना कहा, तुम कितनी जालिम हो कैथरीन, मुझे यकीन नहीं आता मेरी बेटी ऐसा कुछ भी कर सकती है। किसी के जज्बात से खेलना किस कदर बुरी बात है। डॉक्टर स्लोपर चाहते थे कि उनकी फतह बरकरार रहे, मगर वो सोच रहे थे कि दोनों में ताल्लुक अब भी बरकरार है जो नहीं होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मरने के बाद वो दोबारा मेरी बेटी के पास आ जाए। कैथरीन के लिए चंद रिश्ते तो आए, मगर उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसने डॉक्टर स्लोपर के इस शक में इजाफा कर दिया कि उसकी बेटी अब भी मॉरिस से ताल्लुक रखना चाहती है। कई साल गुजर गए तो एक दिन डॉक्टर स्लोपर ने कैथरीन से कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तुम वादा करो कि मेरे मरने के बाद मॉरिस से शादी नहीं करोगी। मैंने इसलिए कहा कि मॉरिस यहां न्यूयॉर्क में आया हुआ है, उसकी शादी हो चुकी थी मगर अब बीवी नहीं है, इसलिए दोबारा शादी की ख्वाहिश रखता है। वो अमीर तो ना हो सका मगर मोटा हो चुका है। वादा करो कैथरीन। मैं वादा नहीं कर सकती। वो गुस्से में आ चुकी थी, वो गुस्सा जो उसे बहुत कम आता था। अच्छा, मैं अपनी वसीयत तब्दील कर रहा हूं, मुझे वजह बताओ तुम उससे शादी ना करने का वादा क्यों नहीं कर रही। कोई वजह भी नहीं और वादा भी नहीं कर सकती। कुछ अरसे बाद डॉक्टर स्लोपर मर गए, अपनी बेटी को अपनी जायदाद में से बहुत कम हिस्सा दिया। कैथरीन को जायदाद ना मिलने का कोई असर ना हुआ। एक साल बाद उसकी आंटी ने कहा, कैथरीन मॉरिस इसी शहर में है, तुमसे मिलना चाहता है। मगर मैं मिलना नहीं चाहती, कैथरीन ने जवाब दिया। कैथरीन, कैथरीन वो तुम्हें अब भी चाहता है। उसकी शादी हुई मगर वो कह रहा था कुछ अरसे बाद ही वो दुनिया से रुखसत हो गई, अब दोबारा तुमसे शादी करना चाहता है। मगर मैं शादी नहीं करना चाहती, कैथरीन ने चेहरा दूसरी तरफ किया और आंटी से छुपकर रोने लगी। एक हफ्ते बाद दोबारा आंटी ने बात की तो कैथरीन ने कहा, मॉरिस से कहें यहां से दूर चला जाए, मैं उससे मिलना नहीं चाहती, उसे देखना नहीं चाहती। मगर कैथरीन तुम्हें एक मर्तबा जरूर मिलना चाहिए, फैसला बाद में करना। इस गुफ्तगू के दौरान मॉरिस वहां आ गया। आंटी ने आने की दावत पहले ही दे दी थी। आंटी कैथरीन और उसे अकेला कमरे में छोड़कर चली गई। पहले तो कैथरीन उसे पहचान ही ना सकी, अब वो मोटा हो चुका था, दाढ़ी भी थी, सर के बाल कम थे। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है हम दोबारा दोस्ती कर लें, मैं आपको उस वक्त भी चाहता था और आज भी। कैथरीन ने दोबारा उसे देखा, एक अजनबी शख्स उसके सामने था जिसको वो चाहती थी, मोहब्बत करती थी, उससे बहुत मुख्तलिफ। यहां से चले जाएं मॉरिस, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, क्या हम दोबारा करीब नहीं आ सकते, नहीं, अब यह मुमकिन नहीं, तो मुझे यहां से चले जाना चाहिए। उसने ये कहा और वहां से चला गया कभी वापस ना आने के लिए। कैथरीन अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी थी। वॉशिंगटन स्क्वेयर बाय हेनरी जेम्स। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.sayedirfanali.com